शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
तो कल हम लोग जप के विषय में चर्चा कर रहे थे कैसे जप करना चाहिए, बड़े ध्यान से शब्दों को बोलना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने कल प्रयास किया जो आपने बोला उसको सुनने का, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों ने प्रयास किया कि जो बोल रहे थे उसको सुनने का? ओके। और याद होगा आपको कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग देखते रहते हैं आप जो करते हैं जप के समय, वैसे भी जप के समय नहीं हर समय। कितने लोग देखते हैं?
13
कैमरे लगे हुए हैं। और कोई छोटे कैमरे हैं भगवान के? बहुत बड़े बड़े कैमरे। और जब हमें जप करना है तो कौन से भाव में जप करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कल हमने चर्चा की थी कैसे करना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, शब्दों को सुनना चाहिए, ये जप कैसे होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जप करने का भाव क्या होना चाहिए, किस भाव में हमें जप करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो जप करना तो निश्चित अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि हमारा क्या भाव है। जैसे हम कल कह रहे थे कि कोई मजाक में भी अगर भगवान का नाम लेता है, अनजाने में भगवान का नाम लेता है, तो उसको लाभ मिलता है। लेकिन क्या भक्तों को ऐसे मजाक में अनजाने में ध्यान से नहीं नाम लेना चाहिए? या जो भक्त जो व्यक्ति मजाक में अनजाने में लेता है उसको निश्चित लाभ मिलता है, लेकिन उसको वो लाभ नहीं मिलता है जो भक्तों को प्रेम से लेने में मिलता है, उसमें अंतर है। प्रभुपाद समझाते हैं कि नाम लेने में तीन अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था जब हम अपराध करते हुए नाम लेते हैं। अभी हम लोग थोड़े समय पहले 10 नाम अपराध पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे जब अपराधों को करते हुए हम नाम लेते हैं उसको अपराध युक्त नाम कहते हैं, अपराध से भरा हुआ भगवान का नाम लेना। याद है आप सबको वो अपराध कि आपको रोज पढ़ने पड़ते हैं? कितने लोगों को 10 नाम अपराध याद हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को याद है बिना देखे बोल सकते हैं? आता जीव में किसी को नहीं। जब हमें याद ही नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या नहीं करना है। तो जैसे उसमें बहुत सारे अपराध हैं, 10 अपराध हैं, वैष्णवों की निंदा नहीं करना, देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं मानना, गुरु की अवज्ञा नहीं करना, इत्यादि इत्यादि ऐसे सारे हैं। तो जब हम इन अपराधों को करते हुए नाम लेते हैं तो प्रभुपाद समझाते हैं अपराध युक्त नाम है और इससे केवल भौतिक लाभ मिलता है। आपको कुछ भौतिक कामना है, कुछ धन वन की प्राप्ति चाहिए, कुछ पद चाहिए, तो आप ये नाम लेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि नाम लेने से लाभ होता ही। लेकिन अगर अपराध के साथ करते हैं तो जैसे पहला अपराध क्या है? वैष्णव भक्तों की निंदा करना। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन वैष्णवों की निंदा भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, हमें केवल कुछ भौतिक लाभ मिल जाएगा। कोई मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कोई धन मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब नाम अपराध के साथ लिया जाता है तो केवल भौतिक लाभ मिलता है। और हम सब तो जो भक्ति करते हैं वो भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि आपके घर में धन बढ़ जाए? कितने लोग इसलिए भक्ति करते हैं कि मेरे घर में बहुत सारा धन आ जाना चाहिए, या फिर मुझे कोई बहुत श्रेष्ठ बन जाना, मुझे प्रधानमंत्री बन जाऊँ मैं अगला, ऐसी किसी की कामना है? कोई बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो भगवान को प्राप्त करने में ये अपराध जो हैं, 10 अपराध, ये बहुत बड़ी बाधा है। आज विस्तार से नहीं, केवल संक्षेप में इन 10 को कहेंगे। जैसे पहला है वैष्णवों की निंदा करना, और ये हम सब कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उस वैष्णव में कोई दोष है, लेकिन इसलिए कि हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति है, इसलिए हम दोष देखकर निंदा कर देते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि वैसे भी हम निंदा करते ही रहते हैं अन्य लोगों की, लेकिन वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसको सहन नहीं करते। जब आप अन्य लोगों की निंदा करते हो जो वैष्णव नहीं हैं, तो आपको भौतिक प्रकृति के कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। लेकिन जब आप वैष्णवों की निंदा करते हो तो भौतिक प्रकृति के कर्मों के अनुसार फल नहीं मिलता, भगवान के द्वारा दंड दिया जाता है, क्योंकि भगवान उसको सहन नहीं करते। भगवान अपने भक्तों से, वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए उसको सहन नहीं करते। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, अमेरिका में जब थे, अमेरिका में लोगों को कुत्ता पालने के बहुत शौक है और वो अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि इफ़ यू लव मी लव माई डॉग, ऐसे वहाँ पर कहते हैं, अगर मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। तो इसी तरह प्रभुपाद कहते थे हम सब भी भगवान के पालतू जानवर हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के बहुत निकट होते हैं, इसलिए जो भक्तों का अपमान निंदा करता है भगवान सहन नहीं करते। तो पहला अपराध है। दूसरा क्या है? देवी देवताओं को भगवान के समान या उनसे अलग समझ लेना, स्वतंत्र। तो कभी कभी हम लोग ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में बड़े कष्ट आ रहे हैं भक्ति करने से, थोड़ा बहुत ये देवी देवता की भक्ति कर लेते हैं और फिर हमें लाभ मिल जाएगा, फिर हम आके भगवान की भक्ति करेंगे। तो इससे क्या होता है, भगवान से श्रद्धा उठ जाती है, भगवान के नाम से श्रद्धा उठ जाती है और हम देवी देवताओं पर ज़्यादा श्रद्धा करते हैं। तो दूसरा अपराध। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। जैसे हम लोग सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, निर्देश सुनते हैं प्रवचन में वैसे भी, और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए नहीं है, तो ऐसे भी ये करना ये भी एक अपराध है। चौथा, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। अरे शास्त्रों में दिया है, किसको पता सही है कि नहीं है, अब वो उस समय के लिए था, अभी के लिए नहीं है, ऐसी बातें भी अपराध हैं। पांचवा, महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। जैसे कहा जाता है कि जप करने से आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, जप करने से आपको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, तो लोग कहते हैं ये इसलिए कहा गया है ताकि व्यक्ति कुछ अच्छे कार्य करे। बस ऐसा नहीं है कि केवल जप करने से भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा होता तो लोग वन में जाते, हिमालय में जाते, इतनी तपस्या करते, तो फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे इसको कल्पना मानना ये भी अपराध है। छठा है, हम लोग सोचें कि नाम के बल पर हम पाप करें, यही छठा है। अर्थवाद मतलब हम लोग अलग अलग उसको उसके अर्थ निकालने लगे। जैसे लोग भगवत गीता के लिए, भगवान के नाम महामंत्र के लिए इसका ये अर्थ है, उसका वो अर्थ है, अपने मन से अर्थ देना उसको, ये भी एक अपराध है। और फिर सातवां है कि हम भगवान के नाम के बल पर पाप करने लगे। कैसे? हम सोचे कि मैं जप कर रहा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं अगर कोई भी गलत काम करूँगा अगले दिन सुबह 2 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा। है ना, कभी कभी ऐसा मन में आता है कि देखो भगवान के नाम के जप करने से सब कुछ हो जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो ठीक है, आज थोड़ा पाप कर लिया, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा और क्या होगा, पाप सारे कट जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि मैं जप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भक्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं कोई भी पाप कर सकता हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि भक्त पापों से परे हैं, भक्तों को पाप और पुण्य स्पर्श नहीं करते, इसीलिए भक्त जो भी करें वो धर्म है। ये सत्य है, लेकिन ये उन भक्तों के लिए जिन्होंने पूरा जीवन अपनी सारी इच्छाएं केवल कृष्ण को समर्पित करके, फिर उनके जीवन में कोई पाप नहीं। जैसे परीक्षित महाराज ने एक मरा हुआ सांप किसी के गले में डाल दिया, उसका उनको फल नहीं भुगतना पड़ा था। ये गलत धारणा है कि क्योंकि उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया इसलिए उनकी 7 दिन में मृत्यु हुई, नहीं, ये तो भगवान की योजना थी। नहीं तो हमारे जैसे भक्त जो परीक्षित महाराज के स्तर को देख भी नहीं सकते, वो भी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे कोई? किसी, आप समझिए, यहाँ पर कहीं जाएं, आपको प्यास लगे, किसी से पानी मांगे, वो व्यक्ति ध्यान नहीं दे, तो आप क्या मरा हुआ सांप उठा के गले में डालेंगे उसके? तो जब आप नहीं करेंगे, परीक्षित ने कैसे किया? भगवान की योजना। तो इसीलिए ये सही है कि जो एकदम समर्पित भक्त हैं, जिनके जीवन में और कुछ है ही नहीं कृष्ण के अलावा, पूर्ण रूप से उन्होंने जो कृष्ण को समर्पण किया है, उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि हाँ, जो भी गलत बातें भी हों तो वो हम समझ नहीं सकते। जैसे परीक्षित ने गलत किया, हम नहीं समझ सकते कि इतना बड़ा भक्त कैसे गलत कर सकता है। लेकिन बाकी हमारे जैसे भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 10 साल हो गए जपा कर लिया, अब बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, अब जो चाहे पाप कर सकता हूँ, अब मैं पाप और पढ़ने से मुक्त हूँ। नहीं, हम अभी भी कर्म के चक्कर में हैं, इसीलिए नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। 8वां है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको एक कर्मकांड के रूप में समझना। कर्मकांड जानते हैं आप क्या होता है? जैसे हम कुछ यज्ञ करते हैं, इससे ये प्राप्ति होगी, ये करने से ये मिलेगा, तो कर्मकांड कहते हैं। तो इसको भी समझ लेना कि ऐसे ही ये भी एक है। नहीं, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और 9वां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का संदेश देना, महत्व समझाना, महिमा का गुणगान करना। कि कोई व्यक्ति अश्रद्धालु, फिर भी देखिए हम लोग प्रवचन देते हैं, और जब जैसे संजय प्रवचन में 1000 लोग हैं, अब हमें क्या पता कौन श्रद्धालु है कौन नहीं, है ना? जब हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो क्या हम लोग गेट पे खड़े होकर हर एक को पूछते हैं, कार्ड दिखाओ, श्रद्धालु हो या नहीं हो? नहीं हो तो बाहर, अंदर केवल श्रद्धालुओं को अनुमति है। एक दृष्टि से जो भी प्रवचन सुनने आया है वो श्रद्धालु है ही, नहीं तो वो आपकी बात क्यों सुनने आएगा, पिक्चर देखने जाएगा? अगर वो आया है तो श्रद्धालु है, लेकिन फिर भी हो सकता है उसको पूरी श्रद्धा ना हो, तो फिर भी हम लोग प्रवचन में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्तों को ये रिस्क लेना पड़ता है, भक्त ये रिस्क ले लेते हैं, जानते हैं कि हो सकता है इससे हमें थोड़ा अपराध लगे, लेकिन लोगों के उद्धार के लिए वो इसको ले लेते हैं। कि हो सकता है कि 1000 लोगों में 500 लोग श्रद्धालु नहीं हों और 500 श्रद्धालु हैं, जो 500 श्रद्धालु हैं उनके उद्धार के लिए वो रिस्क ले लेते हैं। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को भगवान की महिमा का गुणगान नहीं, भगवान के नाम का जप लेने के लिए कहा जा सकता है। और 10वां अपराध है, सब कुछ जानते हुए भगवान का नाम भगवान को प्राप्त करा सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, भौतिक जगत से परे ले जा सकता है, ये जानते हुए भी आसक्तियाँ बनाए रखना। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे प्रभुपाद की, एक बार एक मैरिज पार्टी थी, तो वो लोग नदी पार करके शादी करने के लिए दूसरी जगह जाना चाहते थे, दूसरे गांव में। तो वो लोग शाम के समय आए, चलो जल्दी जाएंगे, फिर वहाँ पर शादी है। सब लोग बैठ गए, नाव वाले ने नाव चलाना शुरू कर दिया, नाव चलाता रहा चलाता रहा, सब लोग सो गए क्योंकि रात का समय था कि अब जब सुबह होगी तो हम पहुँच जाएंगे दूसरे गांव। और रात भर ये नाव चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, सुबह हो गई, उजाला हुआ, सब ने कहा चलो चलो, उठ गए और देखा अरे गाँव आ गया, तो चलो चलो जल्दी उठें जाएँ शादी करें। लेकिन देखा तो वो तो हमारा ही गांव है, जहाँ पर चढ़े थे कोड़ी बाग वहीं पर खड़े हुए हैं, कोड़ी बाग में, कोड़ी बाग में खड़े हुए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो नाव वाले को डांटने लगे, अरे तुम क्या सो गए थे? बोला नहीं साहब, मैं रात भर चला रहा था। रात भर चला रहे थे तो नाव क्यों नहीं हिली? तो फिर सबको आश्चर्य हुआ, फिर सब देखने लगे तो पता चला कि वो जो लंगर होता है, लंगर कहते हैं ना उसको,
लंगर,
तो वो नीचे पड़ा हुआ था, तो इसीलिए उसको निकाला नहीं था, नाव चला रहा था तो नाव इधर 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 ही हो रही थी, क्योंकि वो तो लगा हुआ था, उसके कारण हिल नहीं पा रही थी, तो रात भर नाव चलाता रहा लेकिन नाव वहीं पर रही। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि इसी तरह हम लोग भक्ति करते रहते हैं, जपा करते रहते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, लेकिन आसक्ति का जो लंगर या एंकर है उसको हम हटाते नहीं। तो फिर वो किस तरह है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बड़ी जोर से नाव चला रहे, धड़ 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 धड़, सोलह माला जाप ये वो, लेकिन नाव वहीं की वहीं रहेगी, आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आसक्ति का लंगर नहीं निकाला। तो इसीलिए दसवां अपराध है कि विषयासक्ति बनाए रखना। तो इसीलिए हम लोगों को आसक्ति से परे जाने के अभी प्रयास करना चाहिए, और इसके परे हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं करें ये भी सही नहीं। तो जप करने के लिए इन अपराधों से, तो प्रभुपाद कहते पहली स्थिति है जब ये अपराध करते हुए आप जप करते हो तो भौतिक लाभ मिलता है। दूसरा स्तर है जहां हम ये सारे अपराध बंद कर देते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इससे भी परे एक स्तर है जहां हम भगवान का नाम प्रेम से लेते हैं, केवल नाम अपराध बंद करके नहीं, वो तो बंद कर दिए, लेकिन प्रेम से लेते हैं, तो इसको इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इसीलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने क्यों बतलाया तीन स्तर, कि जप करना तो महत्वपूर्ण है लेकिन जप से ज़्यादा जप का भाव महत्वपूर्ण है। किस भाव में कर रहे हैं? मान लीजिए आप जप करते समय सोच रहे हैं कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, बड़ी तकलीफ है, मिल जाएगा, लेकिन बस वही मिलेगा और कुछ नहीं। हमारे संस्था के कुछ भक्त एक समय बद्रीनाथ इत्यादि गए थे, यमुनोत्री गंगोत्री, तो वहाँ पर कुछ भक्त आगे चले गए जहाँ पर अनुमति नहीं है। आप में से कितने लोग आए थे बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री? ओके, तो आपने देखा था कि हम लोग जहाँ गए थे यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, वहाँ पर वो बता रहे थे कि एक्चुअली यमुना इससे भी आगे 14 किलोमीटर और आगे जाना होता है, बहुत कठिन रास्ता है, वहाँ से निकलती है। तो वो लोग वहाँ चले गए, वहाँ एक योगी मिले उन्हें, और योगी बहुत गुस्से में थे, ऐसे ऐसे बैठे हुए लाल आँखें। तो ये भक्त गए उनसे बात करने के लिए, तो कुछ क्रोध, कुछ बातचीत हुई, कुछ क्रोध हुआ, तो योगी ने कहा जानते हो मेरी शक्ति, और उसने एक पत्थर की ओर देखा ऐसे, और पत्थर टूट गया केवल उसके देखने से, ऐसे उसने जोर से पत्थर को देखा, पत्थर टूट गया। तो भक्त ने कहा कि उनको बहुत अच्छे प्रणाम किया और कहा कि और कुछ भी शक्ति है आपके अंदर? और वो बता रहे थे कि वो जो योगी है उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, वो कहने लगा कि इतने साल तपस्या करके बस केवल इतना ही मुझे प्राप्त हुआ है कि केवल पत्थर को तोड़ सकता हूँ, देख के कोई लाभ नहीं है। मैंने आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, वाह देखते ही पत्थर तोड़ दिया, आप लोग नहीं कर सकते ना, हम भी नहीं कर सकते। तो बड़ी अजीतर बात लगती है, अरे कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसको क्या फ़ायदा? अगर हम आंखों से पत्थर तोड़ दें या सर से पत्थर तोड़ दें या जो भी हो हथौड़ी लेके तोड़ दें, क्या फर्क पड़ेगा? सही है ना, अगर पत्थर तोड़ना है तो हथौड़ी ले लेना, टूट जाएगा, उसके लिए इतना कई वर्ष तपस्या करके। तो वो सच में उसने कहा कि इतने वर्ष तपस्या करके मुझे बस यही मिला। तो इसीलिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाव सही नहीं। हम भगवान की तपस्या केवल धन की प्राप्ति के लिए या कुछ शक्ति की प्राप्ति के लिए करेंगे तो मिल जाएगी, पत्थर तोड़ देंगे आँखों से, लेकिन लाभ क्या? उससे भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान के विग्रह को देखेंगे वो भी टूट जाएगा। तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि भाव, तो क्या भाव में जप होना चाहिए? सबसे पहला आचार्य समझाते हैं कि हमें एक बच्चे के भाव में जप करना चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है माँ के लिए, उसको कुछ बोलना नहीं आता, कुछ नहीं कर सकता, बस रोता है, और रोता है तो माँ समझ जाती है। तो उस भाव में जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे हमें जप करना चाहिए कि हम कृष्ण को पुकार रहे हैं कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। ये पहला चीज़ हमें जानना चाहिए, ये भाव है भगवान की भक्ति का, तो हमें उस भाव में। दूसरा, निस्सहाय भाव में। निस्सहाय भाव मतलब ये जानकर कि मेरी सहायता करने वाला और कोई नहीं है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने सबको प्रयास कर लिया, तो कौरवों को पांडवों को कोई नहीं जान पाए और कोई नहीं उसकी रक्षा कर पाए। वो जान गई कि और कोई नाथ नहीं है, उसने कृष्ण को पुकारा निस्सहाय भाव में, कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र की कथा आप जानते हैं, हाथी पकड़ा गया, पानी में गया, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अपने को बचाने के लिए उसने बहुत युद्ध किया, नहीं बचा पाया, अंत में भगवान को कह दिया आप ही बचाइए, मैं नहीं बचा सकता। तो ये निस्सहाय भाव, मेरी कोई शक्ति नहीं है, आप ही मुझे बचा सकते हैं, इस भाव में जप करना चाहिए। तो एक बच्चे के भाव में, निस्सहाय भाव में, मेरी कोई शक्ति नहीं है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए। ये जप के लिए, जप के द्वारा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मन में कभी गलती से भी कोई भाव नहीं लाइएगा जप करते समय कि मुझे ये आ जाए, मुँह मिल जाए, बहुत जल्दी हो जाता है, फिर तकलीफ़ होती है। एक बार हम जप कर रहे थे और उस दिन शाम को कोई कार्यक्रम था दोपहर को, और हम उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते थे मंदिर में। तो जप करते करते हम सोच रहे थे कि जब वो कार्यक्रम शुरू होगा हम बोल देंगे कि हमारा सर दर्द हो रहा है, हम भाग नहीं लेंगे। ये बहुत शुरुआत में हमने ज्वाइन किया था, तो तब ऐसा होता था कि ये भाग नहीं लेना है तो कुछ, तो जैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो बहाना करते हैं ना, और जैसे स्कूल का टाइम हो गया एकदम ठीक खेलने के लिए तैयार। तो हम लोग भी शुरुआत थी, बच्चे थे भक्ति में, तो हम लोगों को भी आदत थी। तो हम सोच रहे थे जब करते समय कि मुझे इस कार्यक्रम में नहीं जाना है, और जब ये कार्यक्रम में जाने के लिए सब तैयार होंगे, और हमें क्योंकि ऐसे मना नहीं कर सकते थे, हम नए थे, अभी क्या है, हम किसी को भी मना कर सकते नहीं आना। तब जब नए भक्त होते हैं तो कुछ बोला नहीं जाता, जो कहा जाए चुपचाप करना होता। तो हमने सोचा हम कह देंगे कि हमारा सर दर्द है, ऐसे जब करते समय केवल सोच रहे थे। और जब वो कार्यक्रम का समय आया तब तक हम बिल्कुल ठीक थे, राइट उस समय पर इतना सर दर्द हो गया हम उठ नहीं पाए, सही बता रहे, हमें लेटना पड़ा, इतना सर दर्द। और उस समय भगवान से हमने क्षमा मांगी, गलती हो गई। जब कर अभी आगे से कभी नहीं ऐसा करेंगे कि जब करते समय ये सब गलत बातें मन में नहीं लाएंगे। तो इसीलिए कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए, कोई भौतिक चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और जब मन इधर उधर चला जाए तो जहाँ भी हमें, जो भी हमें स्थान बहुत अच्छा लगता है, चाहे वृंदावन हो, मायापुर हो, तिरुपति हो, कोई स्थान जहाँ के विग्रह बहुत सुंदर लगते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम वहाँ बैठे हुए हैं और उस विग्रह के सामने हैं, तो फिर हमारा जप अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जैसे कल हम बता रहे थे कि जब स्पष्ट नहीं बोल रहे हों तो ध्यान करना चाहिए कि कृष्ण पास में खड़े होकर सुन रहे हैं। अगर कृष्ण खड़े होकर सुनेंगे तो आपका जप कैसे होगा? बहुत अच्छा। जब कोई सुनता है तब हम अच्छा जप करते हैं, है ना। जब कोई हमारे पास बैठा और कह दे कि ठीक से बोल रहे हो, उसके बाद देखें हरे कृष्ण मालूम है ये सुन रहे हैं, लेकिन अकेले बैठे होंगे तो ना हम सुनते हैं ना कोई और सुनता है, हमें भी नहीं पता हम क्या बोलते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत स्पष्ट ये हमेशा सोचना चाहिए कोई ना कोई सुन रहा है। 13 कैमरे लगे हुए हैं, याद है ना आपको, 13 कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि बस दूर से कैमरे लगे खाली फोटो आ रही है, आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है और बहुत स्पष्ट, उनके कैमरे बड़े पावरफुल हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही जाता है कृष्ण के पास। तो अब सोचिए कि अब सुबह इस समय कृष्ण अपना मॉनिटर टीवी में खोल कर बैठे हैं अभी, सब देखने के लिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे जप हो रहा है, और उन्होंने कैमरा फोकस किया कुडाल में, कुडाल के सरसोली धाम में, भगवान ने देखा रे कुछ वक्त बैठे जप कर रहे हैं, कैमरा जूम करो, और यहाँ पर आया और भगवान बड़े प्रसन्न, इतने सारे भक्त हैं, बहुत अच्छा है, जप कर रहे हैं। और फिर भगवान ने कैमरा जूम किया पूनम प्रभु पे और पूनम प्रभु हे कृष्ण हरे कृष्ण, ये क्या हो गया? फिर कैमरा जूम हुआ भगवान प्रभु पे, क्योंकि भगवान है तो भगवान को भगवान प्रभु ज्यादा प्रिय अपना ही नाम है। जूम किया और भगवान भगवान क्या हो रहा है, कान बंद कर लेगी, ये क्या हो गया? तो ऐसे ना तो हमें सोना चाहिए और ना ऐसे स्पष्ट उच्चार अस्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। तो इसीलिए याद रख लीजिए, आप सब पर भी हो सकता है, केवल इन दोनों पे नहीं होगा। भगवान ये तो हमने कहा है, भगवान किसी पे भी जूम कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर आप भगवान को नहीं बोल सकते दरअसल रात को बहुत लेट हो गया था, नींद नहीं आई, आदत नहीं है सुबह उठने की, 5 बजे अतुल कृष्ण को भी सुबह सुबह उठा देते हैं तो क्या करें, अब नींद आ जाती। तो इसीलिए आप देख लीजिए, भगवान किसी के ऊपर भी जूम कर सकते हैं, जिनके ऊपर इच्छा होगी। तो इसीलिए हमें बड़ा स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, एकदम क्लियर, ताकि जब भगवान सुने तो उनको सुनकर आनंद आए, उनको आने की इच्छा हो। दरअसल जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का संग करते हैं, ये भक्त और भगवान का पर्सनल समय है जप। इसीलिए जप के समय कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, अन्य जब तक बहुत ज़रूरी सेवा ना हो हमें जप के समय और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप लोग घरों में रहते हैं, हमने ज़्यादातर देखा है लोग घरों में टीवी देखते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए, मंदिर में तो नहीं कर सकते, टीवी ही नहीं क्या करेंगे, तो लेकिन घरों में टीवी चलता है, जैसे मान लीजिए मैच चल रहा है तो वो जप हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, चौका हरे ये कैसा जप है बताइए। ऐसे जप है, हाँ जी, कैसे भी 16 माला बस हो जाना चाहिए। तो चाहे क्रिकेट देखते हुए हो, मूवी देखते हुए हो, न्यूज़ सुनते हुए हो, बच्चे को खाना खिलाते खिलाते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, खा ले बेटा खा ले, हरे हरे हरे, गिराओ मत नीचे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, ये बिल्कुल जप अच्छा नहीं है। हमने देखा बहुत लोग ऐसा करते हैं घर में, उनका 16 माला ऐसा ही होता है बाकी सारे काम करते हुए। इसका अर्थ ये है कि हम लोग भगवान के नाम को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, बस करना है इसलिए कर रहे हैं। तो घरों में भी, मंदिर ही नहीं, घरों में भी आपको अलग से बैठ कर उसको पूरा समय देकर तब जप करना चाहिए। ये टीवी देखते हुए, फ़ोन पे बात करते करते जप करते हैं लोग, तो जप कर रहे हैं, फ़ोन आ गया उठाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, अभी मैं जप कर रहा हूँ बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है, हरे कृष्ण हरे, अरे उठाने की क्या ज़रूरत है, जब बाद में ही बात करनी है तो फ़ोन ही नहीं उठाना। तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, जब के समय फ़ोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, साइलेंट पे रख देना चाहिए, टीवी बंद रखना चाहिए घर में, और बाकी सारे कार्य। तो जब के समय और कोई कार्य नहीं, ये आपका और भगवान का पर्सनल समय। ऐसे मान लीजिए कि कोई नहीं है, केवल आप और कृष्ण बैठे, तब आप क्या करेंगे? तब आप टीवी देखेंगे, कृष्ण ऐसे बैठे हैं आपके सामने, आपकी सेवा लेने के लिए तैयार, और आप कहेंगे वाह वाह वाह, एक मिनट ना कृष्ण, एक मिनट, बस अभी इंडिया जीतने वाली है, 2 मिनट मैं बाद में आपको देखता हूँ। तो इसीलिए हमारा पर्सनल समय है, कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, जब जब करें तब उस समय जब होना चाहिए। और फिर अगर बहुत ज़रूरी है तो बात करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तो कभी कभी सेवा के लिए करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब ठीक है, लेकिन उस समय जब बंद कर देना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वही जब करते करते अब सेवा कर रहे हैं, कुछ चीज़ उठा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से जब करेंगे तो उस जब का पूरा लाभ होगा। इसीलिए हमें अपराध युक्त जब से ऊपर अपराध मुक्त जब, और उसके बाद शुद्ध जब तक उठना चाहिए, शुद्ध नाम लेने तक, और इसके लिए भाव बहुत महत्व। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कोई प्रश्न है जब के लिए?
माला माला होने के बाद ऐसे हम रहते हैं तब ऐसा कुछ हाँ, किया तो
16 माला जो आपका नियम है वो कर लेने के बाद फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्यों कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या है कि पहले जब आप जप कर रहे हैं तो आपके लिए केवल जप महत्वपूर्ण है, जप ही करना है आपको, लेकिन बाद में क्या है बाकी काम करते हुए भी जप करना है तो वो कर सकते हैं। और फिर भी टीवी देखते हुए जप नहीं करना नहीं चाहिए करना। वो तो स्वाभाविक है। बाकी काम जैसे आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, कभी कभी लोग कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं, प्रभु जी जप करते हैं? हाँ, मैं सुबह 1.5 घंटा वॉकिंग को जाता हूँ, उसी में मेरा जप हो जाता है। तो अर्थ क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य वॉकिंग है, जप नहीं है, लेकिन आप साथ साथ तो जप करो, ये गलत है। आप 16 माला अच्छी तरह करो, उसके बाद आप वॉकिंग करते हुए जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी किसी को पाँव में तकलीफ होती है, वो उठ के वहीं जप करते हैं, वो ठीक है, क्योंकि उस समय उनका महत्वपूर्ण कार्य वॉकिंग नहीं है, वो वॉकिंग के लिए नहीं गए हैं 1.5 घंटा। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग को जाते बस वहीं जप हो जाता है, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब आप महत्व दे रहे हैं वॉकिंग को, साथ साथ में जप भी कर लें, वो एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन एक महत्व हमें जप को देना चाहिए। तो जो 16 माला हमारा जप है उसको पूरा महत्व देना, उसके लिए पूरा समय देना। फिर आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप गायों की सेवा कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो लेकिन साथ साथ किसी से बात करते हुए जप नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त ऐसे करते हैं, दो जन बात कर रहे हैं, बीच बीच में जप करते हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब आप कृष्ण से भी बात कर रहे हो, उनसे भी बात कर रहे हो, कृष्ण से भी बात कर रहे हैं, इनसे भी बात, ऐसे नहीं। तो उस समय जप को रोक देना चाहिए, आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, क्लास चल रही है, जप को रोक देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत महत्वपूर्ण है जप करना ही है, तो बाहर जाना चाहिए या बातें बंद करके कहीं पर अलग जप कर। मूल है कि 16 माला को आपको महत्व देना है, बाकी जो काम आप कर सकते हो तो वो ऐसे कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं, बस में चलते चलते हरे कृष्णा कहिए, ट्रेन में जाते जाते हरे कृष्णा कहिए, वो एक्स्ट्रा है कि वो, और आप हर चीज़ में भगवान को लाने का प्रयास कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन 16 माला में बिल्कुल। यस, हाँ ये सही है कि नाम लेने में श्रद्धा, भक्ति और ध्यान महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर एक माला भी आप ध्यान से करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है, लेकिन हमें फिर भी 16 माला करना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि हमें हमारी स्थिति नहीं पता कि हम इतने शुद्ध स्तर पर हैं कि बहुत शुद्ध नाम ले लेंगे। शास्त्रों में तो कहा गया आप एक ही शुद्ध नाम ले लो बहुत है, जीवन सफल, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है। जैसे हम कल बता रहे थे कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर लिख के देता है, एक दवाई सुबह, एक दवाई शाम को, एक दवाई रात को। तो आप डॉक्टर को बोले कि नहीं मैं उसको दवाई को तोड़ के पूरा पाउडर बना के एक ही बार में ले लूँगा तो लाभ हो जाएगा, नहीं होगा, डॉक्टर बोले सुबह दोपहर शाम अलग अलग समय। इसी तरह 16 माला हमारे रोग के लिए दिए गए हैं, हमारा जो रोग है आचार्य ने जान लिया है और उन्होंने कहा है ये करना है आपने, तब आप शुद्ध होगे, तब आप। तो एक ही माला नहीं, हमें 16 माला बड़े ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसका लाभ एक माला का 16 में होगा ऐसा निश्चित नहीं, क्योंकि हमारा जो जप का भाव है, जो शुद्धता है, वो इतनी नहीं है कि एक माला से हो जाए। और जो शुद्ध भक्त हैं वो भी 16 माला करते हैं एक नियम का पालन के, तो क्योंकि एक नियम है और साथ साथ हमारे रोग के लिए दवाई है, हमें 16 करना चाहिए। तीसरा, हम लोग वचन देते हैं गुरु को कि हम 16 माला जप करेंगे, इसलिए भी करना चाहिए।
कभी कभी प्रभु जी जाप करते समय आदमी को ऐसा फीलिंग होता है अपने बारे में कि ये जो मैं अनर्थ करता हूँ, ये अनर्थ जो है बंद होना चाहिए, मतलब ऐसी फीलिंग होती है, तो ये फीलिंग, ये भाव अच्छा है कि नहीं?
जप करते समय निश्चित ये भाव अच्छा है कि हम ये जाने कि हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, अनर्थ हैं, और मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, ये तो अच्छा भाव है। इसका अर्थ ये है कि साफ सफाई हो रही है। जप करना मतलब हमारे हृदय में झाड़ू लगाने के समान, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाले। इसीलिए जब हम जप शुरू करते हैं तब और ज़्यादा तकलीफ़ें, और ज़्यादा वासनाएं, और ज़्यादा अनर्थ आते हैं। तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कमरा है बंद रखा उसको कई महीनों से, आप जब उसको खोलते हैं तो दिखने में एकदम साफ लगता है, बहुत अच्छा है, फिर जब आप झाड़ू लगाने लगते हैं तब सारी धूल ऊपर आती है, क्योंकि धूल है दिखती नहीं। इसी तरह हमारा हृदय है, कई सालों से बंद था झाड़ू नहीं लगाई, अब जप के द्वारा झाड़ू लगा रहे हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें ऊपर उठ के आती। तो इसीलिए अनर्थ को दूर जाना है ये सोचना बहुत अच्छा है, एक भक्ति सोच सकता, बाकी लोग तो अनर्थ है यही नहीं सोच।
सवेरे सवेरे
जब सवेरे ही करना चाहिए। आज तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर विशेष आए हैं, थोड़ा चर्चा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन विशेष सुबह के समय ही जप होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए हर समय में हमारे मन पर प्रभाव होता है। जैसे सुबह का समय सत्वगुण में होता है, हम सब अच्छे कार्य करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं। सुबह उठते ही आदमी किसी को धोखा देना ये सब नहीं सोचता, थोड़ा तो शांत, चलो भगवान की पूजा कर लूँ ताकि कोई व्यक्ति मिले जिसको धोखा दे सकें इत्यादि। सुबह सत्वगुण में, दोपहर होते होते रजोगुण बढ़ जाता है, तो रजोगुण में व्यक्ति काम करना चाहता है, तो उस समय भक्ति नहीं होती। इसीलिए जो लोग सुबह जप नहीं कर पाते, जब वो दोपहर को करते तो बहुत तकलीफ होती है उनको, होता ही नहीं है, समय लगता है, क्योंकि वो रजोगुण है, मन करने नहीं देता, हर बार आता है चलो एक दो माला रखो, थोड़ा ये काम कर लो बाद में कर लेंगे ये। और रात का समय ये तमोगुण का है, तमोगुण मतलब सो जाना, इसीलिए रात में हम लोग सोते हैं, और इसीलिए सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण का जो प्रभाव शरीर पर है वो स्नान करने से चला जाता है, और मन जप करने से उसके ऊपर से जो तमोगुण का प्रभाव है वो चला जाता है। तो रात में जब हम सोते हैं हमारे मन पर और हमारे शरीर पर तमोगुण का प्रभाव होता है, तो इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए, जिसके कारण बाहरी तौर से हम साफ हो जाएं, और फिर तुरंत जप करना चाहिए जिससे हमारा मन भी साफ हो जाए। इसीलिए जप सुबह ही करना चाहिए, लेकिन अगर ना हो पाए किसी से तो फिर बाद में करें, लेकिन प्रयास करें कि दिन में जितना जल्दी हो सके उसको पूरा कर लें। ऐसे नहीं कि वो रात को करेंगे, 11 बजे जप करना शुरू किया, सब थके हुए हैं, आँखों में नींद आ रही है, वो तो कोई बात नहीं।
तो सवेरे उठकर स्नान करके ही करना,
स्नान करके ही जप करना चाहिए, क्योंकि हाँ कभी अगर ऐसी अवस्था हो जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और इमरजेंसी अभी स्नान नहीं किया उठे हैं, तो फिर ठीक है हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन एक साधारणता हमें उठकर स्नान करके अपने शरीर को बाहरी तौर से शुद्ध करके फिर मन को शुद्ध करने के लिए जप करना चाहिए।
3:30-4 बजे हम उठकर जपा करके फिर से सो सकते हैं।
हाँ निश्चित, कोई बात नहीं, तमोगुण आप कभी भी ले सकते हैं। तमोगुण में कभी भी जा सकते। देखिए शरीर है, शरीर के हिसाब से हमें भक्ति करनी होती है। तो अगर ऐसा है कि सुबह उठने के बाद फिर हमें 7-8 बजे या 6 बजे फिर से बहुत नींद आती है, नहीं सहा जाता, तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब सुबह कर लें और उसके बाद फिर सो। हम लोग कभी कभी कहते हैं भक्तों को आप मंगल आरती आइए, तो भक्त कहते हैं दिन में बहुत नींद आती है, तो हम कहते हैं मंगल आरती आइए, दर्शन कीजिए, एक माला जप कीजिए, जाके सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुबह उठिए तो आदत पड़ जाएगी उससे। ये आप किसी और के लिए प्रश्न पूछ रहे, मैं जानता हूँ। हाँ जी, पूरा क्या निबंध,
मतलब पूरा प्रोटेक्टिंग है,
हाँ हाँ वो तो हम लोग भी करते हैं। हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाना ये हमें चारों ओर से प्रोटेक्शन का कार्य है, इसीलिए हम अलग अलग जगह पे भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करते हैं। तो जब तिलक लगाना है ये एक ऐसा भाव है, जैसे हम लोग 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं, तो उन 12 स्थानों पर तिलक लगाते लगाते हम भगवान का नाम लेते हैं अलग अलग नाम, क्योंकि वो उस स्थान के अधिष्ठाता देव हैं। तो जैसे कहा जाता है कि इस तरफ से ये भगवान मेरी प्रोटेक्शन करें, इस तरफ से ये भगवान प्रोटेक्शन करें, फिर हम लोग आते हैं तो ये कवच पहनने के समान तिलक तो निश्चित हम लोग करते हैं। तो इसलिए नहाने के तुरंत बाद तिलक लगाना चाहिए, ये आवश्यक है। कहीं पर तिलक अवेलेबल नहीं हो, बहुत ऐसी स्थिति जहाँ आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कम से कम पानी लेकर लगा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये जो भगवान के नाम हम उच्चारण करते हैं, आप में से कितने लोग तिलक लगाते समय भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं? ओके, तो करना चाहिए, क्योंकि केवल तिलक लगाना ये तो है ही, क्योंकि हम इसे भगवान का मंदिर मानते हैं, उसको सजाते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के नाम उच्चारण करने से हम उसको शरीर को प्रोटेक्शन भी देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो जैसे हम लोग जब माथे पर लगाते हैं तो क्या कहते हैं,
केशवाय नमः,
केशवाय नमः। तो हम ये कह रहे हैं कि हे केशव, हमारे हमारी रक्षा ऊपर से हमारे सिर की रक्षा आप कीजिए। फिर ऐसे अलग अलग स्थानों पर जब लगाते हैं तो अलग अलग नाम, अलग अलग नाम है, एक ही नाम नहीं है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे अलग अलग नाम। यस, और कोई प्रश्न है? बहुत समय हुआ ना, कहते हैं
हम कभी सेंटिंग वुड में जॉब करते हैं और कभी ऐसी स्थिति आता है जिसमें काउंटर वुड में भी जॉब करते हैं, तो दोनों का अंदर कोई अंतर है?
जब हम बीड्स पर जब करते हैं और काउंटर पे करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है? बीड्स पे जब हम करते हैं, पहला चीज़ जो भक्त तुलसी बीड्स पे करते हैं, तुलसी पे, तो उनको ये लाभ है क्योंकि तुलसी का स्पर्श होता है। तुलसी महान भक्त हैं भगवान की, तो तुलसी का स्पर्श होके जब होता है तो उससे भक्ति बढ़ती है, तुलसी का केवल स्पर्श करने मात्र से। तो इसीलिए तुलसी की माला पर करना ज़्यादा लाभदायक होता है। और दूसरा, जब हम माला पर करते हैं, भले अगर वो तुलसी ना भी हो तो भी हमारी स्पर्श इंद्रिय उस माला से स्पर्श करती रहती है, उससे एंगेज होती है, जो कि काउंटर में इतना नहीं होती। तो इसीलिए जहाँ सुविधा हो वहाँ जप करना चाहिए माला पे, अगर सुविधा नहीं हो तो फिर काउंटर पे करना चाहिए। मूल बात जप होना चाहिए। तो अगर आपको काम करते समय, जॉब के समय नहीं कर पा रहे हैं माला पर, कोई बात नहीं, काउंटर पे कीजिए। लेकिन जब सुविधा हो तब काउंटर पे नहीं करना चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं तो काउंटर लेकर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर सुविधा नहीं है, ये काउंटर केवल उन लोगों के लिए बने हैं दरअसल जो भक्ति में बहुत अभी गंभीर नहीं है या होना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा कि लोग काउंटर लेकर गाड़ी चलाते रहते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, चालू है, कटक कटक। एक बार हम किसी के साथ बैठे थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे, तो हमें कुछ आवाज़ आ रही थी, कच कट कट। तो हमने देखा क्या है, तो जब आजकल यहाँ पर आ गया वो काउंटर, ऐसे खाली लग जाता है, वो ऐसे ऐसे होता रहता है। तो उस वो काउंटर इसलिए बना है कि बहुत इमरजेंसी में जहाँ आपको उपयोग करना हो करें, उसको जीवन का हिस्सा नहीं बना लेना कि रोज माला उसी पे कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। माला पे ही जप करना चाहिए। ये जो सुविधाएं हैं, ये भौतिक तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अलग अलग तरह से किसी ना किसी तरह से लोगों को जप करने की प्रेरणा देने के लिए है बस। लेकिन भक्तों को माला पर ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है,
जब हम ट्रेन में जाने लगते हैं स्नान करने के लिए, ऐसे एक मंत्र स्नान भी होता है, मैंने आपसे काफ़ी पूछा था, तो कौन सी मंत्र बोलना चाहिए मंत्र स्नान के लिए?
सात तरह के स्नान बताए गए हैं, केवल एक नहीं, सात स्नान होते हैं शास्त्र में दिया गया है। दिव्य स्नान है, मंत्र स्नान है, नाम स्नान है, फिर नॉर्मल पानी के द्वारा स्नान इत्यादि। तो मंत्र स्नान मतलब हम मंत्र के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वह सर्वावस्था गतोपि वह यस्मरे पुंडरी काक्ष सब बाह्य अभ्यंतर शुचि ही शुद्ध हो जाएं। ऐसे मंत्रों को बोलकर हम शुद्ध करते हैं। ये जो डीटी वर्शिप करते हैं उनको भी बोलना पड़ता है, तो वो भी पहले अपने आप को मंत्र के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम भगवान को कह रहे हैं कि ओम, मैं किसी भी स्थिति में हूँ, अपवित्र या पवित्र, ओम पवित्र पवित्र वह सर्वावस्थाम गतोपि, किसी भी अवस्था में अगर व्यक्ति यह स्मरेत पुंडरी काक्षम, अगर वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, स बाह्य बाहर रूप से, अभ्यंतर अंदर से शुचि ही शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कभी कभी करते हैं मंत्र स्नान। लेकिन नहीं भी कर पाए, कुछ नहीं हो, कोई अवस्था में जब करना अलाउड है, करना चाहिए। इवन जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है उस समय पर मंदिर नहीं आते इत्यादि, लेकिन जब बंद नहीं करना चाहिए, जब चालू रखना। ऐसा नहीं कि वह शुद्ध अवस्था है तो जप नहीं करेंगे, जप तो करना चाहिए। हाँ, बगर अन्य अशुद्ध अवस्थाओं में, जैसे आप सुबह के समय शौच वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जप नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे हर समय मन में चालू रहना चाहिए। और कोई प्रश्न, या फिर हम लोग जपा शुरू करें, काफ़ी समय हो गया है। शुरुआत में कोई तकलीफ नहीं है, आप एक माला कीजिए, दो माला कीजिए, तीन माला, लेकिन एक फिक्स रखिए कि जैसे चार माला करने तो चार फिक्स, रोज चार तो कम नहीं करना, बढ़ा सकते, चेंज कर सकते, बढ़ा सकते, कम नहीं, चार हैं तीन अपने हिसाब से, आपको जितना समय है, जैसे आपको 10 मिनट है तो 2 माला हो जाता है, 1 माला हो जाता है, आधा घंटा है तो 4 माला हो जाते हैं, ऐसे तो आप उतना समय जितना दे सकते हैं उसको प्रारंभ कीजिए। और उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम 16 तक पहुँचें। तो 16 ही क्यों, ये एक प्रश्न है, चार ही क्यों नहीं हम लोग करें। एक उपनिषद में कहा गया है कि अगर जीवन में व्यक्ति एक नंबर दिया गया है, इतने करोड़ नाम भगवान के ले लेता है तो निश्चित मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाता है। तो ऐसा अगर हम उसको नंबर को देखें, वो जो दिया गया है, तो अगर 16 माला जप हम करते हैं तो 55 साल, 55 ईयर्स अगर आप 16 माला जप करोगे तब वो नंबर पूरा हो जाता है। और इसीलिए भक्त क्या सोचते हैं, अभी 55 साल तो है नहीं तो 16 की जगह 32 कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से हो जाए, 25 साल में हो जाए। तो इसीलिए ये एक और कारण है कि आचार्यों ने जो नंबर फिक्स किए हैं, क्योंकि शास्त्र में दिया गया कि इतने बार आपने अगर भगवान का नाम ले लिया तो मृत्यु के बाद आपको मुक्ति प्राप्त होती है, तो इसीलिए 16 माला दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमें केवल 16 करना है, 16 से हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 16 ये एक मिनिमम नंबर है, क्योंकि इतना करोगे तब 50 साल में आपका उद्धार होगा, उतना तो करना चाहिए, क्योंकि जब हम 16 माला करते हैं तो 25,000 भगवान के नाम लेते हैं।
टाइम मिला तो ज़्यादा किया तो चलते हैं,
बहुत अच्छा है, हर ज़्यादा जितना कर सके करें, लेकिन एक नंबर फिक्स होना चाहिए, चाहे आप 4 फिक्स कर लीजिए, 8 कर लीजिए कि रोज इतना तो करूँगा, उसके बाद समय मिला तो और 2-4 कर सकते हैं। Yes. हाँ, जप में अलग अलग प्रकार के, 3 प्रकार के जप होते हैं। एक मानसिक कहते हैं, जो मन में किया जाता है जिसमें हम बोलते नहीं, दूसरा वाचिक जिसमें हम इतना बोलते केवल हम सुने, और तीसरा जोर से। तो इन तीनों में सबसे अच्छा वो कहा गया जो जोर से बोला जाता है, तो इसीलिए संकीर्तन। हाँ, इसीलिए वो बता रहे हैं पूरा, तीनों में ये अच्छा माना गया। इसका कारण क्या है कि जब हम जोर से करते हैं तो सारे प्राणियों को लाभ होता है, पेड़ पौधे सुनते हैं, जो जीवाणु हैं वो सब सुनते हैं, इसलिए अच्छा। लेकिन जब हम लोग जप करते हैं साथ में बैठ के, तो हमें वो जप करना चाहिए जो हम केवल बोलें और हमारे कान तक पहुँचे, हमारे साथ में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई नहीं दे, ऐसा करना चाहिए। मानसिक भी ठीक है, लेकिन मन से किया हुआ जप हमारे ध्यान में बाधा डालता है, क्योंकि हम लोग इतने अभी मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं कि केवल मन को मन में करें, तो स्वाभाविक आप करके देख लीजिए, आप मन में जब करोगे धीरे धीरे मन इधर उधर घूम जाएगा, लेकिन जब बोल कर करते हैं तो मन को कंट्रोल करने में इजी होता है। तो मानसिक में कोई गलती नहीं है मानसिक में, लेकिन अभी स्थिति में वो इतना अच्छा हमें नहीं है, क्योंकि हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा मन भटक जाएगा कहीं।
कंसंट्रेशन करने का समय थोड़ा याद करके थोड़ा,
हाँ तो अच्छा है, वैसे करना चाहिए, लेकिन वही है कि हम एकदम मन में अगर करेंगे बोलेंगे नहीं तो नींद आने ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे कई लोगों को देखा, आप भी देखोगे अभी थोड़ी देर बाद देखे गए करना चाहिए। अच्छा, जो भी करना पड़े जब को अच्छा करने के लिए हमें करना चाहिए, इसीलिए कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि अगर बैठ कर नींद आ रही है कोई बात नहीं, अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर भी नींद आ रही है तो अब चलने लगो। वैसे सबसे अच्छा जप है एक जगह बैठ कर किया गया जाए, लेकिन आजकल हमारे, हमने बताया ना, कलयुग की खटारा गाड़ियां हैं तो पांव दर्द होता है, पेट दर्द होता है, मन बैठने नहीं देता, तो फिर कम से कम खड़े होकर कर लेना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा चल के बस। ठीक है, तो अभी जब करेंगे, काफ़ी समय हो गया, हमने सोचा था 5-10 मिनट कहेंगे, लेकिन ये समय बहुत हो गया, अभी जब करेंगे आज, अभी समय कितना हुआ,
6:45,
तो अभी बहुत लेट हुआ, 7:30 बजे तक यहाँ जब करेंगे, फिर 7:30 बजे गौशाला जाएंगे, क्योंकि 8 बजे गायें चली जाती हैं, तो 7:30 बजे गौशाला जाके फिर दर्शन करके फिर और 1 घंटा प्रसाद के बाद जब करेंगे बैठ के। क्योंकि 2 घंटा होना चाहिए, पूरा नहीं हो पाएगा 16 माला, तो अभी कर लेंगे। और फिर गौशाला से आके गुरु पूजा गौशाला में ही करेंगे, तो गौशाला से आके प्रसाद लेके फिर सब साथ में वहाँ पर हॉल में बैठकर फिर से जप करेंगे, ठीक है। जिस दिन घर में फंक्शन है 1 घंटा जल्दी उठना चाहिए। हरे कृष्ण, तो इसे जब करेंगे बैठ के।